أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا وأمدا ممدودا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجاد محمود الأحمد بالقاسم محمد وصاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الهية القائم بأمر الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. أليف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. عزیزان گرامی، قرآن مجید میں کچھ بنیادی مفاہیم اور ٹرمینالوجیز بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ ایمان، عدالت، صبر، جہاد. اسی طرح ایک مفہوم انفاق کا بھی ہے. انفاق قرآن مجید کے بنیادی مفاہیم میں سے ایک ہے، اور اس کتاب مبین میں 60 مقامات پر اس مفہوم کا ذکر کیا گیا. انفاق درحقیقت خلوص نیت سے راہ خدا میں خرچ کرنے کا نام ہے، اور راہ خدا میں کیا خرچ کیا جائے، یہ مال کا خرچ کرنا ہے، یہ جان کا خرچ کرنا ہے، یہ علم کا خرچ کرنا ہے، یہ حکمت کا خرچ کرنا ہے، یہ عقل کا خرچ کرنا ہے، یعنی وہ ہر وہ چیز جسے آپ یہ سمجھیے کہ اللہ کی بارگاہ سے نعمت کے طور پر ملی ہے اور اس کی عطا ہے، اس میں دوسروں کے حق کو شامل کرنا اور شریک کرنا اور ان کی طرف اس کو خرچ کرنا، یہ انفاق کے زمرے میں آتا ہے. جہاں تک اسلامی معاشی نظام کے کا تعلق ہے، اس کا ایک بہت ہی اہم اور سگنیفیکنٹ پلر ہے یہ نفاق، جس کے ذریعے سے قرآن کے بیان کردہ معاشی نظام میں دولت اور وسائل رزق کی تقسیم اور اس تقسیم کی ضرورت، اس تقسیم کا طریقہ کار، اس کے مالی اور غیر مالی فوائد کو بیان کیا گیا. ایک بہت اہم بات ہے اور اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ نیچر نے جو انسانی معاشرے تخلیق کی ہے، اس میں سارے انسان ایک سطح پر نہیں رکھے گئے. اس میں لیئرز ہیں، اس میں کچھ اپر اسٹریٹا کے لوگ ہیں، کچھ مڈل اسٹریٹا کے لوگ ہیں اور کچھ لوور اسٹریٹا کے لوگ ہیں. اور یہ تفریق جو کلاسز کی صورت میں اور لیئرز کی صورت میں معاشرے میں رکھی گئی، اسے سورہ نحل میں، جو قرآن مجید کا 16 سورہ ہے، اس کی 71 آیت میں بیان بھی کیا گیا. ارشاد ہوا، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی. فما الذین فضلوا بارادیہ رزقہم، लेकिन जिन्हें हमने रिस्क में फजीलत दी दूसरों पर, अलामा मलिकत ईमान हूँ, वो उन लोगों तक उसे क्यों नहीं पहुँचाते जो जो उनसे कमतर हैसियत के हामिल हैं, उनके ताबे फरमान हैं। फहम फी है सवाउन, हालांकि वो कमतर हैसियत के लोग उस माल में बराबर के हिस्सेदार हैं। अफा बे नेमत अल्लाह यह जदून, क्या वो अल्लाह की नेमत के इनकारी बने हुए हैं? यानी अगर ये समझा जाए अपर स्ट्रैटा में ये साहिबान माल उजर की तरफ से कि जो कुछ है उनकी अपनी अक्ल समझ और अपनी कोशिश और काविश के नतीजे में उनकी ये हैसियत है, तो दरहकीकत ये खुदा की नेमतों का इनकार है। परवरदिगार आलम ने यहाँ पर जो कुछ अता किया कसरत के साथ उसे अपनी नेमत करार दिया और उसको अपना समझने वालों को नेमत का इनकारी ठहराया। तो लिहाजा ये नेचर का प्रोसेस है कि लेयर्स में सोसाइटी होगी और अपर स्ट्रेटा की जो ज़्यादा खुदा की तरफ से नेमतों से नवाजे गए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से एक ये है कि वो लोअर स्ट्रेटा की तरफ उन नेमतों की तकसीम और तरसील का सिलसिला जारी रखें और ये खुदा के फरमान के मानने और उसकी नेमतों के इकरार का तरीका है। अब ये जो वसाइल की और दौलत की डिस्ट्रीब्यूशन है इसको भी कुरान करीम ने कहीं इक्वल नहीं कहा। ये भी बहुत समझने वाली बात है कि जब भी तकसीम वसाइल और ज़र का मामला है यहाँ पर कुरान मजीद ने इसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ तवज्जो दिलाई। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जिसको जितना हक उसका है उसे मिल जाना चाहिए या जो जितना फ़र्ज अदा करे उसे मिल जाना चाहिए, तो लेकिन हर एक को बराबर नहीं मिल सकता। तो इक्वल का कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि इक्विटेबल का कॉन्सेप्ट है। अब इस माशी निज़ाम में दो कैटेगरीज बनाई गई इस डिस्ट्रीब्यूशन की, इस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की। एक कैटेगरी ऑब्लिगेटरी यानी फ़र्ज और उसमें ज़कात और खुम्स को रखा गया। दूसरी कैटेगरी है इस तकसीम वसाइल की वो नॉन ऑब्लिगेटरी है यानी गैर फ़र्ज, मसलन सदका फ़र्ज़ नहीं है, कर्ज हसना फ़र्ज़ नहीं है। लोग ट्रस्ट यानी वक्फ करते हैं चीज़ों को, पानी के वसाइल बनाते हैं वक्फ करते हैं, इमारतें बनाते हैं वक्फ करते हैं, इबादतगाहें बनाते हैं वक्फ करते हैं, ये भी फ़र्ज़ नहीं है। इसी के साथ साथ इन्फाक यानी जो कुछ अल्लाह की बारगाह से नेमतों की सूरत में अता किया गया उसके उसके बंदों की तरफ खर्च करना। अब इस नॉन ऑब्लिगेटरी स्पेंडिंग में कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ना कोई कानून बनाकर इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये सिर्फ खुदा की खुशनूदी के लिए बंदा आगे बढ़ता है और हर वो चीज़ जो खुदा ने रिस्क के तौर पर उसे दी है उन लोगों को उसमें शरीक करता है जो उससे महरूम है। इसकी मिसाल एक पानी के झरने जैसी है जो पहाड़ से निकलता है और फिर नदी की सूरत में बहने लगता है। तो जहाँ जहाँ ये गुजरता जाता है आबादी बनाता जाता है और हयात बांटता चला जाता है, लेकिन अगर इसके आगे बंद बांध दें, इसको रोक दें, तो आगे की ज़मीन खुश्क और बंजर हो जाएगी और ऐन मुमकिन है कि जब ऊपर से फ्लो होगा उस झरने का और नीचे से बंद बंधा हुआ होगा तो एक मकाम एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि वो उसका जो सोर्स है उस झरने का वो अपना अपने लिए कोई दूसरा रास्ता तलाश कर लेगा, वो वहाँ के अलावा किसी और तरफ फूटने लग जाएगा और किसी और तरफ बहाव को अख्तियार कर लेगा। तीसरी सिचुएशन ये है कि बंद बांधा ज़रूर जाए लेकिन उसको चैनलाइज किया जाए, जैसे कि डैम्स बनाते हैं दरिया के बहाव के ऊपर, उसके बाद उसमें से नहरें और कैनाल्स निकाले जाते हैं। इसका पर्पस क्या होता है कि दूर दूर जहां पॉसिबिलिटी नहीं है उस नेमत के पहुंचने की वहां तक भी उस नेमत को पहुंचाया जाए। बिल्कुल यही फिलॉसफी है इन्फाक की। यानी एक तो ये कि ऊपर से झरना बह रहा है उसको नेचुरल कोर्स में बहने दिया जाए जो भी उसे फायदा उठा ले, दूसरा ये है कि उसके आगे बंद बांध दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली अपने लिए कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकाल लेगा, उस जगह से बहना बंद हो जाएगा और आगे की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। तीसरा कोर्स ये है कि बंद बांधा ज़रूर जाए लेकिन महदूद वसाइल को इकट्ठे करके उसको चैनलाइज किया जाए। ये फिलॉसफी है इन्फाक की कि चैनलाइज करना, उसको ऐसे ज़रियों के तरीक़ों से उन लोगों तक पहुंचाना कि जो सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरतमंद है। अच्छा, अब इन्फाक का जो मतलब है, वो उसका जो रूट वर्ड है वो है नफक। इन्हीं नफक से ये निकला, और इसका मतलब है ओपन एंडेड टनल, यानी एक ऐसी गुजरगाह, एक ऐसा रास्ता जो दोनों तरफ से खुला हुआ हो। और टनल में एक तरफ से अगर कोई चीज़ दाखिल हो रही हो तो दूसरी तरफ से निकल भी रही हो। जब तक निकलने का रास्ता खुला रहता है, अंदर आने की गुंजाइश बाकी रहती है। लेकिन अगर निकलने का रास्ता बंद हो जाए तो फिर स्पेस घटती जाती है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो सैचुरेट हो जाती है, फिर इनफ्लो बंद हो जाता है, अंदर आने का सिलसिला बंद हो जाता है। लिहाजा अगर इंसान को खुदा से नेमतों की आमद और अता की ख्वाहिश है, और ऐसी ख्वाहिश है कि ये सिलसिला अता कभी ख़त्म ना हो और सैचुरेट ना हो, तो उसे ओपन एंड टनल बनना चाहिए, यानी बांटने, तकसीम करने, इन्फाक करने और खर्च करने के रास्ते को अख्तियार करना पड़ेगा। अब यहां पर ये सवाल पैदा होता है कि कितना इस रास्ते को खोला जाए। इस सवाल का जवाब भी सूरह बकरा में है। मैंने तकरीर की इब्तिदा सूरह बकरा की इब्तदाई आयात से की। ये वो सूरह है जिसमें सबसे ज्यादा इन्फाक और खर्च करने और माल के तकसीम के मुताल्लिक कुरान पाक में सबसे ज्यादा गुफ्तगू इस सूरे के अंदर की गई। तो अब ये सवाल कि कितना खोला जाए इस रास्ते को, उस टनल के रास्ते को, तो सूरह बकरा की 219वीं आयत में इसका भी जवाब दिया गया। वही सलून का माजा युनफकून, ए नबी, यह आपसे सवाल करते हैं कि क्या खर्च करें। कुलिल अफवा, कह दीजिए कि अपनी ज़रूरतों से जो ज़्यादा हो। इस सवाल और इसका जवाब जो कुरान मजीद ने पेश किया, इस कंक्लूजन की तरफ ले जाता है कि हर वो मिल्कियत जो इंसान की अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हो वो मालुल्लाह है, और उस मालुल्लाह को राह अल्लाह ही में खर्च होना चाहिए। लिहाजा ये कोई फेवर नहीं है और ना ही कोई एहसान है कि जो लोगों पर देने वाले करें कि हमने किसी को फलां चीज़ को ये दे दी, फलां को ऐसा दे दिया, फलां को, हरगिज़ भी नहीं। सूरह नहल में जो भी मैंने आपके सामने वो लेयरिंग ऑफ सोसाइटी के हवाले से जो आयत पढ़ी, 71वीं आयत जो पढ़ी, उसमें वाज़े लफ्ज़ों में कहा फ़हुम फ़ीह सवाउन, वो कमतर हैसियत के नादार लोग इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। लिहाजा किसी का एहसान नहीं है इस इन्फाक के ज़रिए से, बल्कि वो जो हिस्सा अल्लाह ने खुद मुकर्रर किया उस हिस्से का फ़कत पहुँचाना है, और जो जितना हिस्से को पहुंचाता जाता है उतना ही उसकी टनल खुली रहती है और इनफ्लो होता रहता है। जब तक आउटफ्लो होता रहेगा उसका इनफ्लो भी होता रहेगा। अब इस हक को जताने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, इसकी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए कुरान मजीद ने कई मकाम पर बहुत ज़ोर लगाया, और जहाँ जहाँ परहेजगारों और ज़िम्मेदार लोगों की खसूसियात को बयान किया, खसूसियत से इस सिफत को बयान किया, यानी इन्फाक की सिफत को। ज़िम्मेदार लोग इन्फाक करने वाले हैं, ईमानदार लोग इन्फाक करने वाले हैं, परहेजगार मुत्तकी लोग इन्फाक करने वाले हैं। सूरह ज़ारियात में, जो कुरान मजीद का 51 नंबर का सूरह है, जब परहेजगारों और ज़िम्मेदार लोगों का तस्करा किया गया और उनकी खसूसियात को बयान किया गया, तो 15वीं आयत से मुख्तलिफ उनकी खसूसियात को डिस्क्राइब किया, और 19वीं आयत में पहुँच कर कहा कि ज़िम्मेदारों और परहेजगारों की पहचान क्या है। वफ़ी अम्बालहिम हक़ुन लिस्साइल वल महरूम, कि ये वो लोग होते हैं जो अपने अंबाल में सवालियों, तंगदस्तों, तहीदस्तों और महरूमों का हक रखते हैं। इसी तरह सूरह बकरा में, जिसका मैं बार बार तस्करा कर रही हूं कि सबसे ज्यादा जिक्र इन्फाक का इसी सूरह के अंदर है, 177वीं आयत के अंदर तवील गुफ्तगू की गई और बहुत खोल कर गुफ्तगू की, और इरशाद फरमाया लैसल बिर्रान तवल्लुक वजहकुम कबल मशरिक वल मगरिब वलाकिन अल बिर्रा मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वल नबीना वातियुल माल अला हुब्बिही ज़वल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न सबील वस्साइलीन फिर रक़ाब। नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरों को मशरक़ की तरफ कर लो या मगरब की तरफ कर लो, यानी हम जो इबादतें मगरब की तरफ मुँह करके करते हैं और यहूद जो है मशरक़ की तरफ मुँह करके करते हैं, उस बात को कुरान मजीद ने एड्रेस किया। और फिर कहा नेकी तो اس کی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر اور ملائکہ اور کتاب پر ایمان رکھتا ہے اور نبیوں پر ایمان رکھتا ہے. اور اس ایمان کی علامت کیا ہے؟ وہ اپنا مال اللہ کی محبت میں اپنے اقربا رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں اور مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو، غلاموں کو رہائی دلانے کے لیے صرف کرتا ہے. اور اس آیت کے اختتام پر کہا اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ صاحبان تقویٰ ہیں. یعنی سچ کی پہچان بھی انفاق ہے اور تقویٰ کی شناخت بھی انفاق ہے. پھر تیسرا مقام جہاں اس انفاق کی خصوصیت کو پرہیزگاروں اور ذمہ دار لوگوں کی شناخت بتایا گیا وہ ہے سورہ بنی اسرائیل جو 17واں سورہ ہے قرآن مجید کا. اس کی 26ویں آیت میں ارشاد فرمایا وَآتَ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دے دو اور یہ فضول خرچی کرنے سے بہتر ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انفاق کرنا، خرچ کرنا، اور خرچ بھی مال کا خرچ کرنا، جان کا خرچ کرنا، علم اور عقل کا خرچ کرنا، صحت کا خرچ کرنا، اتنا آسان نہیں ہوتا. اگر اتنا آسان ہوتا تو یہ دنیا جنت نظیر نہ ہو جاتی. قرآن کریم نے اس مسئلے پر بھی بہت خوبصورت گفتگو کی اور سورہ بلد جو 90 نمبر کا سورہ ہے قرآن مجید کا، وہاں پر اس انفاق اور خرچ کرنے کو ایک دشوار گزار گھاٹی سے تشبیہ دی. گھاٹی ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں کہ جو تو پہاڑوں کے درمیان ہو اور بہت تنگ ہو، بہت پتلی ہو اور اس میں سے گزرنا بہت مشکل ہو. تو یہ دشوار گزار گھاٹی ہے انفاق. سورہ بلد نے 5ویں آیت سے اس مضمون پر گفتگو کرنی شروع کی اور اس گھاٹی کے دشوار سفر کو بتایا گیا، یہاں تک کہ 12ویں آیت میں سوال کیا گیا وما ادراک ما العقبہ، تمہیں معلوم ہے یہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ فقر رغبتن او اطام فی یومن ذی مصطبۃن یتیمن ذا مقربۃن او مسکینن ذا متربۃن. اب اللہ خود بتا رہا ہے کہ یہ دشوار گھاٹی کیا ہے. فقر رغبتن، کسی کی گردن کا غلامی یا قرض سے چھڑانا. اب دیکھیے کہ جس معاشرے میں قرآن آیا وہ ایک سلیوری کا اس میں ایک ٹریڈیشن تھا، اور پھر یہ سلیوری کا ٹریڈیشن صرف عربس میں نہیں تھا بلکہ یورپ میں بھی 18ویں صدی تک سلیوری کا ٹریڈیشن تھا اور یہ بلیک سلیوز کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اور پھر یہاں سب کانٹیننٹ کے اندر بھی جو کمزور لوگ تھے وہ صاحب حکومت اور طاقتوں کے پاس، ان کو آٹومن امپائر میں، مغل امپائر میں، یہ ساری امپائر جو تھیں وہ سلیوری کے انسٹیٹیوشن کو بہت اس کو بہت سپورٹ کرتی تھیں. اچھا، اب کیا یہ سلیوری کا سسٹم ختم ہو گیا؟ آج ماڈرن ڈے سلیوری ہے، وہ اکنامک سلیوری ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس میں چھوٹے آدمی کی کو اپنی معیشت کمانے کے موقع کم سے کم کر دیے جاتے ہیں. یعنی پہلے ہم نے کبھی دیکھا تھا اپنے بچپن میں کہ چھوٹے چھوٹے دکانیں بھی ہوا کرتی تھیں شہروں میں، قصبوں میں، چھوٹا دکاندار بھی، چھوٹا کام کرنے والا بھی، اس کے لیے ایک اسپیس تھی. پھر ایک اکنامک سلیوری کا دور آیا تو وہ چھوٹے دکاندار اور چھوٹے پیسے بنا کروانے والے، روزیوں والے لوگ غائب ہو گئے، ان کی جگہ بڑے بڑے پلازاز اور مالز نے لے لی، اور پھر وہ چھوٹی چیزیں بیچنے والوں کی جگہ چینز بن گئیں، سپر اسٹورز، سپر اسٹورز کی چین. یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے چھوٹے اور کمزور آدمی کو اپنا اکنامک سلیو بنا لیا. اب وہ جو چھوٹی دکان کر سکتا تھا آج وہ ان کا سیلز مین ہے. لہٰذا اکنامک جو ریپریشن ایک پیدا کی گئی. اب انفاق کیا ہے؟ اس اکنامک ریپریشن سے لوگوں کو نکالنا اور قرض سے ان کو چھڑانا. پھر آگے فرمایا او اطام فی یوم زمزغبتن، دشوار گھاٹی کیا ہے؟ بھوکوں کا کھانا کھلانا. یتیمن ذا مقربتن، اور یتیم کو پانا تو اس کی مصائب اور مشکلوں کو حل کرنے کی کوشش کرنا. او مسکین انزا مطربتن، اور مسکین کے افلاس کو دور کرنا، یہ ہے وہ دشوار گھاٹی. یعنی پورا اکنامک ایک امپروومنٹ کا ایک کانسیپٹ ہے اس کے اندر، اس انفاق میں. اب دیکھیں یہ گھاٹی، یہ بھی کہہ دیا کہ یہ گھاٹی ہے اور مشکل گھاٹی ہے، اس میں سے گزرنا آسان نہیں ہے انفاق. لیکن اب چونکہ اس گھاٹی کا سفر بھی طے کرانا ہے، تو پروردگار عالم نے اس میں کمفرٹ زون کو کریٹ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ انفاق بالکل ہی ناقابل عمل چیز بن کر رہ جائے. اور قرآن مجید نے پانچ مقامات پر، کم از کم پانچ مقامات پر، اس انفاق کو اپنے اوپر قرض کے طور پر بیان کیا گیا. اللہ نے اپنے اوپر قرض کے طور پر بیان کیا کہ یہ دینا، یہ خرچ کرنا بندے کو نہیں ہے بلکہ خدا کو ہے، خدا اس کا براہ راست ریسیپینٹ ہے. اب آپ انفاق کے ذریعے خدا کو قرض دیتے ہیں، اور قرض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کو دیا وہ آپ کو واپس کرے گا. قرآن کریم میں کم از کم پانچ مقامات پر اس قرض کو جو اللہ کی طرف ہے انفاق کی شکل میں اسے بیان کیا گیا. پہلا مقام سورہ بقرہ، جیسے میں نے بار بار کہا کہ سب سے زیادہ انفاق پر جو گفتگو ہوئی سورہ بقرہ میں ہوئی. ارشاد ہوا 245 نمبر کی آیت، منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو اللہ کو پاکیزہ قرض دے، یضاعفہ لہ اضافا کثیرا، تاکہ اللہ اس کے قرض کو اس کے لیے کئی گنا زیادہ کر دے اور زیادہ کر کے اسے واپس کرے. واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون، یہ جان لو کہ اللہ ہی تنگ دستی میں مبتلا کرتا ہے اور اللہ ہی فراخی عطا کرتا ہے، اور تمہیں اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دوسرا مقام جہاں پر کمفرٹ زون کریٹ کیا گیا، سورہ حدید کی 11th آیت ہے. سورہ حدید قرآن مجید کا 57th سورہ ہے، اور اسی 11th آیت میں ارشاد فرمایا، منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خدا کو قرض حسنا دے، فیضائفہ لہو اجرا کریم، تاکہ وہ اس کے قرض کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے اور اس کے لیے عزت اور تکریم کا اجر مقرر کرے. تیسرا مقام اسی سورہ حدید کا 18th آیت، اور وہاں پر ارشاد فرمایا، ان المصدقین والمصدقات واقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لہم ولہم اجر کریم، صدقہ دینے والے مردوں، صدقہ دینے والی عورتوں، اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والوں کو اس سے کئی گنا بڑھ کر عطا کیا جائے گا، ان کے لیے عزت اور تکریم کا اجر ہے. چوتھا مقام سورہ تغابن، جو قرآن مجید کا 64th سورہ ہے، اس کی 17th آیت کے اندر ارشاد فرمایا گیا، ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یضاعفہ لکم، تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا. فیغفر لکم، وہ تمہیں بخش بھی دے گا. واللہ شکور حلیم، اس لیے کہ وہ قدردان اور حلیم ہے. اب پانچواں مقام قرآن مجید کا 73rd سورہ، سورہ مزمل، اس کی 30th آیت، اور وہاں پر ارشاد فرمایا، وَاقْرُضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دیا کرو، وَمَا تَقَدَّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور جو نیکی تم اس انفاق کے ذریعے اپنے لیے آگے بھیجو گے، اس کا اجر اللہ کے پاس اس سے بہتر پاؤ گے. اب یہ دیکھیے کہ یہ پانچ مقامات پر ہر جگہ یہ کہا گیا کہ یہ قرض ہے، اسے واپس ملنا ہے، کئی گنا بڑھ کر یہ واپس ملے گا، اور یہ اللہ کو دیا ہوا وہ قرض ہے جسے قرض حسنہ کے طور پر قرآن مجید میں پاکیزہ قرض کے طور پر اس کو روشناس کرایا گیا. اب دیکھیے کہ یہ کتنے لیئرز میں قرآن مجید نے بات کی. پہلی لیئر میں کہا کہ یہ جو ہے گھاٹی ہے، دشوار گزار گھاٹی ہے. پھر اس گھاٹی کے لوازمات کیا ہیں، اس گھاٹی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ بتا دیں. دوسری منزل پر اس گھاٹی کے سفر کو طے کرانے کے لیے کمفرٹ زون کریٹ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ انفاق سے بھاگ ہی جائیں. کمفرٹ زون کہ اس میں کوئی تمہارا نقصان نہیں ہوگا، یہ اللہ کو قرض دو، اللہ تمہیں بہت زیادہ بڑھ کر اسے ریٹرن کر دے گا. یہ کمفرٹ زون کریٹ کیا. تیسرے مرحلے کے اندر اس پر کے ریوارڈ پر بات کی، اور تین مقامات ہیں صرف اسی سورہ بقرہ کے اندر جس کے اندر انفاق کا ریوارڈ اور اس پر اجر کی گفتگو قرآن مجید نے کی. پہلی آیت 272 نمبر کی ارشاد فرمایا گیا وما تنفقوا من خیر یوفى لکم وانتم لا تظلمون, جو کچھ تم انفاق کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور کوئی تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی. یعنی پہلا ریوارڈ کیا ہے؟ اکول ریٹرن, جو تم دو گے وہ پورا تمہیں واپس مل جائے گا, لہذا گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں. 245 نمبر کی آیت کے اندر اسی سورہ بقرہ میں ایک دوسرے لیول پر جا کر بات کی اور ارشاد فرمایا منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضافا کثیرا, کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تو اللہ اس کے بدلے میں اسے کئی گنا زیادہ کر کے واپس کرے گا. یعنی پہلے مقام پر کہا کہ اکول ریٹرن ہے, دوسرے مقام پر کہا کہ بہت زیادہ اضافہ کر کے یعنی منافع در منافع کے ساتھ اس قرض کو واپس کریں گے. پھر اس منافع کی لیول کہاں تک جا سکتی ہے؟ انسان کی ایک اسٹریچ آف امیجنیشن ہے, سوچ ہے کہ کہاں تک یہ قرض, یہ منافع اور یہ کثیر اور اضافہ کس لیول تک جا سکتا ہے. تو اسی سورہ بقرہ کی 261 آیت میں اس منافع کو کہ انکریز کو, اس کے اضافے کو جب بیان کیا گیا تو کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں, کمثل حبۃ انبتت, اس کی مثال ایک دانے کی سی ہے, سبا سنابلا, جب دانہ اگ گیا تم نے بو دیا وہ اگ گیا اس میں سے سات بالیاں نکلیں, سبا سنابلا سات بالیاں, فی کل سنبلۃ مائۃ حبۃ, اور ہر بالی میں سے 100 دانے نکلے. دانا کون سا ڈالا تھا؟ ایک. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم, اللہ اسی طرح کئی گنا بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے, وہ بہت صاحب وسعت ہے اور بہت جاننے والا ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہا کہ ایک دانہ خدا کے راہ میں انفاق کرنے کا جو مثال ہے وہ کیسی ہے, کم مثل حبۃ انبتت, ایک دانہ تم نے ڈالا, سبا سنابلو سبا سنابلا, ایک دانے سے سات بالیاں نکل گئیں, فی کل سنبلتن مایتو حبتن, اور ہر فی کل سنبلتن مایتن حبتن, ہر ایک بالی میں 100 دانے, سات بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے, تو 7 × 100 کتنے ہو گئے؟ 700. یعنی ایک دانے سے 700 دانوں میں اضافہ. یہ کس لمٹ پر جا کر قرآن مجید نے بات کی ہے کہ ایک دانے جو انفاق کر ڈالا گیا اس کے بدلے میں 700 دانے کی لیول تک, یعنی 700 ٹائمز آپ کے انفاق کو اللہ جو ہے وہ بڑھا سکتا ہے اور اس کو واپس کرتا ہے بڑھا کر. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم, یہ بات یاد رکھو کہ خدا اسی طرح اضافے کیے جاتا ہے لیکن جس کے لیے چاہے, اور وہ بہت ہی صاحب وسعت اور جاننے والا ہے. یعنی تین لیول سے بات کی قرآن مجید نے, ایک کہا کہ انفاق بہت ضروری ہے, یہ اکنامک سسٹم اسلام کا جو ہے اور قرآن کا ہے اس کا سگنیفیکنٹ پلر ہے. پھر کہا کہ یہ بہت دشوار گزار گھاٹی ہے, اس دشوار گزار گھاٹی کے لوازمات بتا دیے کہ کہاں کہاں انفاق کرنا جو ہے وہ بہت تکلیف دہ اور بہت ہی کٹھن گزرتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ اس کی کمفرٹ زون کی کیفیت کیا ہے, وہاں پر اللہ کے قرض کے طور پر ایک کمفرٹ زون کریٹ کیا کہ لوگ انفاق سے گھبرا نہ جائیں, اور چوتھی لیول کے اوپر اسے ریوارڈ کی شکل میں انسان کے سامنے پیش کیا کہ فقط قرض ہی نہیں اس میں اتنا اضافہ کرتے ہیں جیسے ایک دانے سے 700 دانے تک. اب اس تفصیل کے بعد بھی سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ انسان انفاق سے گھبراتا کیوں ہے. اس کا جواب بھی سورہ بقرہ ہی میں موجود ہے, آیت کا نمبر 268, اور جواب دیا گیا الشیطانو یادکم الفقر و یامرکم بالفحشاء, یہ شیطان ہے جو تمہیں غربت اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے, واللہ یادکم مغفرتا منہم و فضلا, لیکن یہ اللہ ہے جو تمہیں اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اب عزیزان گرامی ذرا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی طرف پلٹ کر آئیے, جو میں نے ابتدائی تقریر میں آپ کی سماعت کی نظر کی, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ये किताब है अलिफ लाम मीम, ये किताब है। कौन सी किताब? ला रे बफी, इसमें कोई ऐब और कोई रैब नहीं। किसके लिए? हुदन लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन की हिदायत के लिए। कौन मुत्तकीन? यूमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। वह यकीमुन सलात, जो क़याम सलात के झंडे को उठाए हुए हैं। वह मिम्मा रज़क़नाहुम हम युन्फ़िकून, और जो कुछ हमने अपनी बारगाह से उन्हें रिस्क दिया उसमें इन्फाक करते हैं। अब ये तो हुई मुत्तकीन की सिफात। क्या सिफात हैं? यूमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान। गैब क्या है? खुदा। किसी ने देखा है खुदा? लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशंस इतनी ज्यादा हैं कि इनकार करने वाले को भी तड़प तड़प कर कोई एक अंधी अनदेखी ताकत खुदा की शक्ल में जरूर याद आती रहती है। ये देखिए, जो कोरोना का ये वायरस का जो अटैक हुआ, वो भी जो खुदा के नाम मानने वाले थे उन्हें भी बेचैन होकर खुदा याद आया। यूमिनून बिल गैब व यकीमून सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िकून, और अल्लाह की दी हुई नेमतों का रिस्क का इन्फाक करने वाले। ये तो हो गई मुत्तकियों की सिफात। और जो इमामुल मुत्तकीन हो उसका यूमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान की कैफियत क्या होगी? इरशाद फरमाया अमीरुल मोमिनीन ने, लो कशफल गता लमसदत यकीना, अगर आसमान के हिजाबात हटा दिए जाएं तब भी मेरे यकीन की कैफियत में दाने बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो खसूसियत मुत्तकीन की, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िकून, वो अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से इन्फाक करते हैं। इसी सूरह बकरा में दो आयात हैं जहाँ किसी का तस्करा किया गया, किसी हस्ती का, किसी शख्सियत का तस्करा किया गया। एक आयत जिसमें उस गुरोह और उस शख्सियत के माल के इन्फाक को बयान किया गया, और दूसरी वो आयत जहाँ उस शख्सियत, उस मुत्तकी की जान के इन्फाक को बयान किया गया। 274 नंबर की आयत जहाँ एक गुरोह की और उस शख्सियत की, उस अजीम मुत्तकी के माल के इन्फाक को बयान किया गया। इरशाद हुआ, अल्लज़ीना युन्फ़िकून अम्वालहुम बिल्लैल वन्नहारे सिर्रं वलानियतन फलहुम अजरहुम इंदा रब्बहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये कौन हैं? ये वो हैं अल्लज़ीना युन्फ़िकून अम्वालहुम बिल्लैल वन्नहार, ये रात को भी खर्च करते हैं, ये दिन को भी खर्च करते हैं। और क़ुरान करीम की वो आयात कि जिसमें उस ज़कात का तस्करा हुआ कि जो हालत रुकू में दी जाती है, उस ज़कात का तस्करा भी जो हालत रुकू में दी गई, और रुकू में देने वाला कौन है? इमामुल मुत्तकीन। इरशाद हुआ, अल्लज़ीना युन्फ़िकून अम्वालहुम बिल्लैल वन्नहार, ये वो हैं जो अपने माल को दिन और रात को खर्च करते हैं। सिर्रम वलानियतन, वो दिखा कर भी इन्फाक करते हैं, वो छिपा कर भी इन्फाक करते हैं। फलहुम अजरहुम इंदा रब्बहिम, उनके लिए उनके अल्लाह के पास उनका अजर मौजूद है। वला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना वो किसी से खौफ खाने वाले लोग हैं, ना उन्हें किसी किस्म का हुज़्न व मलाल होता है। अब ये माल का इन्फाक करने वाले ये कौन लोग हैं? कुरान करीम ने और इनकी क्या शनाख्त और पहचान है, और किस तरह कुरान करीम ने इसको, इस माल के इन्फाक को बयान किया? सूरह नहल की दो आयात हैं, 75 और 76, जहां एक मिसाल के जरिए से इस शख्सियत की शनाख्त कराई गई। 75वीं आयत में कहा, ज़रब अल्लाह मिसलन अबदन ममलूकन ला युकद्दर ला शैयन वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसनन फहुवा युन्फ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरन हल यस्तवून। अल्लाह तुम्हारे सामने एक गुलाम बंदे की मिसाल पेश करता है। ज़रब अल्लाह मसलन अबदन ममलूकन, एक वो बंदा है जो गुलाम है, मालिक का गुलाम है। ला युकद्दर ला शैयन, उसे किसी चीज पर इख्तियार ही नहीं है, कुदरत ही नहीं है। दूसरी मिसाल, वमन रज़क ना हो मिन्ना रिस्कन हसनन, एक उस शख्स की है जिसे हमने अपने पास से उमदा रिस्क दिया। फहुवा युन्फ़िक़ु मिन्हु, तो वो इन्फाक पर उतर आया, उसे बांटने लगा। सिर्रम व जहरन, छुपा कर भी और दिखा कर भी। हल यस्तबून, कि हम उस गुलाम को इस इंफाक करने वाले के बराबर कर दें। अब यहां पर देखिए जो मिसाल पेश की कुरान मजीद ने गुलाम की, ये वो गुलाम नहीं है जिसे एक खरीदा हुआ एक नौकर एक मुलाजिम जो अपने आका के चश्मो अबरू के इशारे पर उसको एम्प्लॉय किया जाता है, ऐसा नहीं है। ये किस गुलामी का तस्करा कर रहा है कुरान? ये गुलामी उन लोगों की है कि जो मालो मताए दुनिया तो अपने पास रखते हैं, सल्तनतें और बहुत करो फर तो अपने पास रखते हैं, और अपने वसाइल में बहुत ज्यादा ताकत और कुदरत भी रखते हैं, उसके बावजूद भी वो वसाइल उनके हाथों से जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाते। मिसाल के तौर पर तेल के जखीरे हैं मुसलमान ममालिक के अंदर, वो तेल के जखीरे जाती अय्याशियों पर खर्च हो रहे हैं, यानी वो तेल और उस तेल को हासिल करने वाले उसकी दौलत को, वो कौन है? वो उस दौलत के गुलाम हैं। वो उस दौलत को अपने ही लिए खर्च करते हैं और अपने ही हाथों में घेर के रखते हैं। और ये मिसाल जो है हम आम लोगों पर भी लगती है। हमारे कमरे भरे हुए हैं, स्टोर भरे हुए हैं, अलमारियां भरी हुई हैं, लॉकर्स भरे हुए हैं, बैंक अकाउंट भरे हुए हैं, लेकिन अगर हमें कोई खर्च करने के लिए कहे अल्लाह के नाम पर तो हम सबसे घटिया चीज निकाल कर उसे पेश कर देते हैं, इसलिए कि दिल में तबो ताब नहीं है। और वो ताब क्यों नहीं है? कि हम गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? उन चीजों के गुलाम हैं, उस माल के गुलाम हैं, उस दौलत के गुलाम हैं, उस ताकत के गुलाम हैं। अब हम एक नई स्लेवरी में दाखिल हो गए, अब वो चीजें हमारी आका बन चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ कौन है जिसे हमने पाकीज़ा रिस्क दिया? तो उसने जमा जोड़ कर नहीं रखा, उसने बांटना शुरू किया, चेक दिखा कर भी बांटना शुरू किया, छुपा कर भी बांटना शुरू किया। और बांटने की एक मिसाल खैबर के मैदान से पेश करूं, फतेह खैबर का वो दिन है कि यहूदियों का माल और दौलत कसरत से मुसलमानों के हाथ लगा और पैगंबर ने सब में तकसीम किया, और फतेह खैबर को यकीनी बात है कि सबसे ज्यादा हिस्सा पहुंचा होगा। फतेह खैबर वो दिन है जिस रोज पहली बार मुसलमानों ने पेट भरकर खजूरें खाई थी। अली मैदान खैबर में शुक्राने की नमाज पढ़ने खड़े हो गए, लोग मालो मता समेट समेट कर मदीने की तरफ चल पड़े। जब आप नमाज शुक्राना खत्म कर चुके तो देखा कि कुछ औरतें और बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं। पूछा आपने अपने दोस्तों और साथियों से कि ये कौन है? कहा मक्तूलीन खैबर के वरसा, जिनका ये मालो असबाब मुसलमानों के हवाले हो गया, ये आपसे कुछ उस माल में से कुछ चाहते हैं ताकि अपने बच्चों की परवरिश कर सकें। अल्लाहु अकबर, क्या मिसाल पेश की है कुरान मजीद ने कि गुलामों को, दौलत और माल के गुलामों को उसके बराबर कर दें। फहुवा युनफिकु मिन्हु सिर्रन व जहरन, जो छुपा कर भी देता है और दिखा कर भी देता है। आपने हुक्म दिया अपने साथ मौजूद लोगों को, ये जितना मालो मता मेरे हिस्से में है वो सारा का सारा इन्हें बांट दो। और इसी तरह अली हाथ झाड़ कर खाली हाथ मदीने चले आए, और फातेह खैबर के घर में उस रोज भी खाने के लिए पूरी रोटियां नहीं थी, जिस रोज मदीने के घरों में ईद का सा समा था। कुरान करीम कहता है हम उन बांटने वालों को इन गुलामों के बराबर खड़ा कर दें, क्या इन गुलामों को उन बांटने वालों के बराबर मकाम दे दें? ये दोनों बराबर हो सकते हैं? दूसरी मिसाल 76वीं आयत में इसी सूरह नहल में कुरान मजीद ने बयान की, वज़रब अल्लाह मिसलन रजलीना अहदहुमा अबकुम ला युकद्र ला शैयन वहुवा कुल्लुन ला मौला ए नमा युवजहु ले याति बि खैरिन हल यस्तबी हुआ वमन यामुरु बिल अदल वहुवा अला सिरातम मुस्तकीम। अब खुदा तुम्हारे सामने दो आदमियों की मिसाल बयान करता है, एक ज़रब अल्लाह मिसलन रजलीन, दो मर्द, अहदहुमा आबाकुम, एक वो है जो गूंगा है, ला युकद्र ला शैयन, और किसी चीज पर उसका अख्तियार ही नहीं है, वह हुआ कुल्लुन अला मौला हो, और पूरा का पूरा अपने मालिक पर बोझ है। एनमा युवज हो याति बे खैरिन, जब भी उसे कहीं भेजा जाता है वो कोई काम दुरुस्त करके आता ही नहीं, कोई खैर की खबर लाता ही नहीं। हल यस्तवी हुआ, क्या उसे बराबर कर दें? किसके? वमन यामरो बिल अदल, जो अदल का हुक्म देता है, वह हुआ अलाउ सिराते मुस्तकीम, और जिसका रास्ता सिराते मुस्तकीम है। अब यहां पर दो मर्दों की मिसाल है, एक वो मर्द जो गूंगा है। अब गूंगे से मुराद ये नहीं है कि जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, ये वो गूंगे हैं जो खैर की बात नहीं सुनते, जिनके कानों में नेकी की बात नहीं जाती, जो इन्फाक की दास्तान सुनने को पसंद नहीं करते। उन्हें कहा कि ये गूंगे हैं, वो उन्हें किसी शय पर कुदरत ही नहीं है। यानी कुदरत का मतलब यह है कि देखिए, कुदरत किस चीज़ पे होती है? जो चीज़ आपकी मिल्कियत होती है। और जब मिल्कियत को जताने का तरीका क्या होता है कि आप उसको किसी के भी किसी वक्त हवाले कर सकते हैं, ये आपकी कुदरत है उस चीज़ पर। किसी के पास अगर कोई सवारी है, अगर वो उसका मालिक है, तो वो जिसे चाहे वो सवारी को दे दे। अगर वो मिल्कियत नहीं रखता, उस पर मालिक नहीं है, तो वो सवारी को नहीं दे सकता। लेकिन इन्फाक न करने वाला उसी तरह है कि चीज़ें उसके पास हैं, लेकिन वो अपनी मिल्कियत का इजहार नहीं कर सकता देकर, क्योंकि उसके अंदर देने की सकत ही नहीं है। और जब उसे देने की तरफ आमादा किया जाता है, तो वो गूंगा बन जाता है। वो किसी भी खैर के काम में आगे बढ़ने पर तैयार ही नहीं होता, उसमें सकत ही नहीं है। जैसे कि गुलाम में सकत नहीं होती, वो अपने मालिक के लिए बोझ है। ऐसे तमाम लोग जो खैर की तरफ नहीं बढ़ते, जो इंसान की फलाह की तरफ नहीं बढ़ते, जो खुदा की आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहते, जो पैगंबर के उस फिलॉसफी पर, जो एक इंसानी बेहतरीन इंसानी माशरे की फिलॉसफी है, उस पर लब्बैक नहीं कहते, ये सारे वो लोग हैं जो गूंगे लोग हैं। ये सारे वो लोग हैं जो अपने मालिक पर बार बने हुए हैं। जहाँ इन्हें भेजा जाता है, कोई खैर की खबर नहीं लाते, कोई काम दुरुस्त करके नहीं आते। अब कुरान पूछता है कि क्या हम इन्हें उसके बराबर कर दें? या मरुबिल अदल व हुवा अला सिरात मुस्तकीम, जो अदल का हुक्म देता है, जिसकी राह सिरात मुस्तकीम है। कौन अदल का हुक्म देता है? देखिए, कौन अदल का हुक्म दे सकता है, ये ज़्यादा बेहतर सवाल है। अदल का हुक्म वही दे सकता है जो साहिब हैसियत हो दीन के हवाले से, जो साहिब हकीकत और मकाम हो दीन के हवाले से, और फिर दुनियावी ताकत के एतबार से भी उसमें हुक्म देने की कैपेसिटी हो। मतलब मैं किसी को हुक्म दूँ तो मेरा हुक्म कोई मानेगा? कोई भी नहीं मानेगा। हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त, हमारा अजीज, हमारा साथ काम करने वाला कुलीग हमें हुक्म देगा तो हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे, जब तक कि कोई हम पर ताकतवर कैपेसिटी का आदमी हमें हुक्म नहीं देगा, हम उसके हुक्म को नहीं मानते। तो कुरान कहता है, क्या कोई ये सारे गुलाम उसके बराबर हो सकते हैं? या मरुकम बिल अदल, जो अदल का हुक्म देता है। और अदल का हुक्म, देखिए, खिलाफत का एक इंस्टीट्यूशन कायम हुआ और उसमें बहुत छोटा पीरियड जनाब अली मुर्तजा को मिला। उस छोटे पीरियड में जो मुश्किल 5 साल बनता है, सबसे ज्यादा किस चीज की पुकार थी? अदालत की, इंफाक की। सबसे ज्यादा पुकार अदालत और इंफाक, इंसाफ की थी। और सबसे ज्यादा लोग किस बात से बेचैन हुए? अली के अदालत के इस फिलॉसफी से। क्यों जमल खड़ी हुई? अदल की वजह से। क्यों सिफीन में तलवारें खींची अली के खिलाफ? अदालत और इंफाक की वजह से। क्यों नहरवान में जाहिल अवाम एक ग्रोह बनाकर अली के खिलाफ खड़े हो गए? अदालत और इंफाक की वजह से। और तारीख इंसानी में जिस शख्स, वाहिद शख्स के लिए कहा गया कत्ल फी मेराब ही लिशिद्दत हिल अदल, अली इब्न अबी तालिब के अलावा कोई नहीं, जो अपने अदल में शिद्दत की वजह से मेराब इबादत में कत्ल कर दिया गया। अजीजाने गिरामी, ये इन्फाक जो अली ने किया, जो अदालत का झंडा उठाया अपने 5 साल दौरे हुकूमत में, और कहते हैं ना कि बहुत टर्बुलेंट था अली का पीरियड। क्यों टर्बुलेंट था? इसलिए कि लोगों के ज़ाती मफादात और वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें सर्व नहीं हो रहे थे। अली उस माल को, जो हकीकी में मालुल्लाह था, उनके हकदारों तक पहुंचाना चाहते थे, जिसका हुक्म कुरान ने दिया। इसलिए कि अली का मकाम क्या है? अल अली उल माल कुरान वल कुरान माल अली। अली का मकाम क्या है? अल अली उल माल हक वल हक माल अली। अली हक के साथ हैं और हक अली के साथ हैं। अली कुरान के साथ हैं और कुरान अली के साथ हैं। और वो पीरियड जिसमें आप साहिब ताकत और हुकूमत नहीं थे, उसमें आपके इन्फाक का क्या आलम था? मदीने की सारी ज़रात को जनाब अली इब्न तालिब ने तरतीब दिया, बेहिसाब खेतियाँ लगाईं, बेहिसाब बाग लगाए, बेहिसाब कुएँ खोदे, और फिर बेहिसाब उनको वक्फ किया बंदगाने खुदा के लिए। और वो वक्फ की तहरीरें डॉक्यूमेंट्स में मौजूद हैं आज भी जनाब अली मुर्तज़ा की। अल्लज़ीना युनफिकून अम्वालहुम बिल्लैल वन्नहार सर्रम वलानियतन, कौन है ये जो अपने माल को दिन हो या रात छुपा कर हो या दिखा कर मुसलसल इन्फाक करते रहते हैं? फलहुम अजरहुम इंदा रब्बहिम, उनका अजर उनके अल्लाह के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो किसी खौफ के तहत ये नहीं करते और ना कोई उन्हें हुज़्न मलाल है। दूसरी आयत इस सूरे में, सूरह बकरा में जान के इन्फाक की बयान की गई। वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, नास में से कुछ ऐसे हैं जो अपने नफ्स को अपने अल्लाह के हाथों फरोख्त कर देते हैं और बदले में मर्जी खरीद लेते हैं। किसकी मर्जी? इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, अल्लाह की मर्जी। वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, बहुत करीम है, बहुत रऊफ है खुदा अपने उन बंदों के ऊपर। कौन है नफ्स बेचने वाले और मर्जी है खुदा खरीदने वाले? ये जान का इन्फाक करने वाले हैं, कौन है ये? सूरह अनफाल की तीसरी आयत, 30 नंबर की आयत सूरह अनफाल। वो वक्त आ गया पैगंबर की जिंदगी में कि जब चचा का साया सर पर से उठ गया और हर तरफ से बढ़ने वाले हाथ पैगंबर पर बढ़ने लगे, और इस असना में कुफारान कुरैश ने यह देखा कि लोग जोख दर जोख आहिस्ता आहिस्ता मदीने की तरफ निकल रहे हैं, और एक साइजेबल नंबर जो है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पर ईमान लाने वाला वो मदीने मुंतकिल हो चुका है, अब वहाँ उनकी एक सपोर्ट बेस बन रही है। तो उस अरब की ट्राइबल सोसाइटी के अंदर एक उनकी एक असम्बली थी, कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जिसे आप कह लें, जहाँ अपने कवानीन और अपने फैसले वो करते थे, और उसे दारुल नदवा का नाम दिया गया था। ये बड़े बड़े सारे सरदार उस दारुल नदवा में जमा हुए और उन्होंने ये मशवरा किया कि अब इस मसले से हम कैसे निपटें, क्योंकि इससे हमारी जो बड़ी और ताकतवर हैसियत है वो मुसलमानों की बढ़ती हुई इस नंबर से वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो किसी ने ये मशवरा दिया उस ग्रोह में से जो सारे सरदारों दारुल नदवा में जमा थे, कहा कि ऐसा करते हैं कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को कैद करके रख लेते हैं ताकि ना इनकी किसी से मुलाकात होगी ना कम्युनिकेशन होगी, लिहाजा इस सिलसिला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। उसके जवाब में लोगों ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, बनी हाशिम तलवार उठाएंगे और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को छुड़ा कर ले जाएंगे। दूसरा मशवरा ये आया कि ऐसा करते हैं कि कोई शख्स उन्हें कत्ल कर दे, और जब मोहम्मद बनी हाशिम शोर मचाएंगे तो हम उनका खून बहा उन्हें दे देंगे। तो उस पर फिर किसी ने कहा कि बनी हाशिम क्या खून बहा पर राजी हो जाएंगे? वो हरगिज़ भी मोहम्मद के कत्ल का बदला नहीं छोड़ेंगे। तो फिर तीसरा मशवरा ये आया कि ऐसा करते हैं कि किसी एक शख्स को तैयार किया जाए जो अपनी जान जो है वो कसास में दे, यानी वो उनके बदले में हम उसे कत्ल करने के लिए पेश कर देंगे, लो इसने मारा है तुम इसे मार लो। कोई आदमी नहीं मिला, कोई अपनी जान का इन्फाक नहीं करता, कोई अपनी जान का इन्फाक नहीं करता, कोई नहीं मिला। फिर आखिर में तय पाया कि सारे कबीलों में से एक एक आदमी, एक हिटमैन लिया जाए और फिर सारे मिलकर मार डालें, कत्ल कर दें मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को। तो फिर बनी हाशिम किससे बदला लेंगे, किस किस कबीले से लड़ेंगे, किस किस से मुकाबला करेंगे? तो लिहाजा ये खून जो है रिस्क़े हवा हो जाएगा। ये तजवीज़ सबको पसंद आई और वो एक हिटमैन का एक ग्रुप तैयार कर लिया गया। सूरह अनफाल में 30वीं आयत में कुरान मजीद इस मामले को बयान करता है। वज़ यम करु बिकल लजीन कफरू ले यसबतू का ओ यख्तलू का ओ यखरजू का व यम करू ना व यम करुल्लाह वल्ला हो खैरुल माकरीन। पैगम्बर याद करो उस वक्त को, वज़ यम करु बिकल लजीन कफरू ले यसबतू का, जब काफिर इस बात की साजिश कर रहे थे کہ تجھے گرفتار کر لیں، اور یقتلو کا تجھے قتل کر ڈالیں، اور یخرجو کا تجھے نکال باہر کریں. ویم کرون ویم کر اللہ، وہ اپنی ترکیبوں میں اور اپنی سازشوں میں اور اپنے مکر میں تھے، ہم اپنی ترکیبوں اور اپنی تدبیروں میں تھے. واللہ خیر المکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا. پیغمبر کو پیغام آیا، جبریل پہنچے، پیغمبر آپ ہجرت کا سفر اختیار کیجئے، آپ کی جان خطرے میں ہے، سازش تیار ہو چکی. کیسے ہجرت ہوگی، کیسے نکلیں گے؟ علی کو اپنے بستر پر سلا دیجئے. پیغمبر علیہ السلام نے جناب علی مرتضیٰ سے یہ معاملہ بیان کیا، کہا اب اہل عرب میرے قتل کے درپے ہیں اور مجھے یہ مکہ چھوڑنا ہوگا. اے علی، خدا کا حکم ہے کہ میں مکہ چھوڑ دوں، اور تمہارے لیے حکم ہے کہ میں تم میرے بستر پر سو جاؤ. یہ کس بات کا سوال کیا پیغمبر نے؟ اے علی، تم میرے لیے اپنی جان دے دو، یہی سوال ہے نا سمپل ورڈز میں. جناب علی مرزا نے صرف ایک بات پوچھی پیغمبر سے. کمال ہے اس جان کے انفاق کرنے والے کا. اے پیغمبر، کیا میرے سونے سے آپ کے بستر پر آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں، بس اسی جواب کے لیے منتظر تھے. علی اس بستر پر سو گئے. ہجرت کی رات پیغمبر نکل گئے. وہ بستر تھا یا علی اپنے مقتل میں لیٹے؟ خود امیر المومنین نے اس رات اس بستر پر نیند کو، سونے کو اپنے اشعار میں بیان کیا، اور سیوتی نے دور منشور میں جناب امیر المومنین کے وہ اشعار نقل کیے، جن میں سے چند کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں. مولا ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنی جان سے، پہلا شعر، میں نے اپنی جان سے اس شخص کا دفاع کیا جو کائنات کا بہترین ہے جس نے اس زمین پر قدم رکھا. کس چیز سے دفاع کیا؟ علی نے رسول کا، اپنی جان سے دفاع کیا، یہ جان کا انفاق ہے. دوسرے شعر میں کہا، میں نے اپنی جان سے اس شخص کا دفاع کیا جو شریفوں میں سب سے شریف ہے. تیسرے شعر میں ارشاد فرمایا، میں نے اپنی جان سے اس شخص کا دفاع کیا جو طواف کعبہ اور ہجر اسماعیل کی رونق ہے. میں نے اپنی جان سے اس شخص کا دفاع کیا جو قابل فخر عبداللہ کا بیٹا محمد ہے. میں اس وقت اس کے دفاع میں کھڑا ہوا جب کفار اس کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. پھر اگلے شعر میں ارشاد فرمایا، یہ وہی وقت تھا جب خدا اپنی تدبیریں کر رہا تھا. میں اس محمد کے بستر پر رہا شب بھر، اور پھر صبح طلوع ہو گئی. میں بستر محمد پر دشمن کا انتظار کرتا رہا، اور اپنی موت یا قید کے لمحوں کو گنتا رہا. اللہ اکبر، رات بھر انتظار کرنا کہ اب حملہ ہوگا، اب ٹکڑے ہو جائیں گے، اب سر کٹ جائے گا. جان کے انفاق کی یہ تربیت باپ نے بیٹے کو شیب ابی طالب سے خود منتقل کی تھی. رزق جان کا انفاق یہ امام المتقین کی شان ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو اللہ کی بارگاہ سے رزق دیا اس کا انفاق کرتے ہیں. اور حیات علی سے خوبصورت رزق کا تصور تو خالق کائنات بھی شاید ہی کرتا ہوگا. کیسا عجیب مرحلہ تھا. پہلے سوچا انہوں نے، ہٹ مینس کے گروہ نے، قاتلوں نے، کہ ہم رات کے وقت حلہ بول دیں. ابو لہب نے اس بات سے روکا اور کہا کہ گھر میں عورتیں اور بچے ہوتے ہیں، لہذا دن کی روشنی نکلتے ہی حملہ کرنا بس وہ مشکل تمام. انہوں نے سورج کی کرنیں پھوٹنے کا انتظار کیا اور اس کے بعد گھر میں داخل ہوئے. ساری رات وہ چھوٹے چھوٹے سوراخوں اور چھوٹی چھوٹی دیواروں والے گھر کی دیواروں سے جھانک جھانک کر دیکھتے رہے، اور بستر پر کوئی کروٹیں لیتا ہوا اور سوتا ہوا نظر آیا تو مطمئن رہے کہ محمد ابن عبداللہ اپنے بستر پر. जैसे ही दरवाजा तोड़कर घर का दाखिल हुए और तलवारें खुली हुई हैं, नेजे झनकार उस नेजों की है, एक ग्रोह कातिलों का अंदर पहुंचा और एक झटके से चादर जनाब अली इब्न अबी तालिब पर से खींच ली। चादर का खींचना था, उनकी फ्रस्ट्रेशन अपनी इंतहा पर पहुंच गई। देखा कि मोहम्मद तो नहीं, उनके बदले में अली वहां पर मौजूद हैं। झुंझलाहट के आलम में गिरेबान पकड़ लिया जनाब अली मुर्तजा का, पल पड़े जनाब अली मुर्तजा पर और कहा, कहाँ है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला? तो आपने बड़े तहम्मुल से इरशाद फरमाया कि मेरे हवाले करके गए थे जो मुझसे सवाल कर रहे हो। अब ये जवाब भी झुल्लाने के लिए और फ्रस्ट्रेट करने के लिए बहुत काफी था। छोड़ छोड़ दिया जनाब अली मुर्तजा को कि ये हमारा टारगेट ही नहीं, फौरन निकले तलाश में जनाब पैगंबर अलैहिस्सलाम के। वो एक अलग दास्तान है, लेकिन उस रात बड़ा अजीब सौदा हुआ। सूरह बकरा की 207वीं आयत में इस सौदे का तذکرہ हुआ, व मिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह। नास में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने नफ्स को, अपनी जान को बेचने के लिए आते हैं, सौदा करते हैं। वो नफ्स और जान बिकती है तगा मरजातिल्लाह, और बदले में उन्हें खुदा की मर्जी हासिल होती है। क्या खूबसूरत सौदा हुआ उस रात! खुदा खरीदार बना, अली सौदागर बने, और सौदा क्या था? अली की जान। खरीदार ने सौदे को बहुत बेहतरीन पाया, फौरन सौदा ले लिया, फौरन सौदा ले लिया, और बदले में क्या दिया? इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, अपनी मर्जी उस सौदे के वज़ उस सौदागर को के हवाले कर दी। कायनात की तारीख में इससे खूबसूरत भी कोई सौदा हुआ हो? जिस सौदे का स्पोक्समैन कुरान मजीद बना, और जिस सौदे के गवाह जिब्रील और मिकाइल बने। आवाज़ दी जिब्रील और मिकाइल को परदगार आलम ने कि मैंने तुम दोनों को एक दूसरे का भाई बनाया, और तुमसे सवाल करता हूँ कि कौन आगे बढ़कर अपने भाई के लिए अपनी जान को कुर्बान करता है। दोनों ने इनकार करके कहा, परवरदगार हम तेरी इताअत में जिंदा रहना चाहते हैं। कहा, जाओ और जमीन की तरफ देखो, एक भाई दूसरे भाई पर अपनी जान कुर्बान कर रहा है। उस सौदे के गवाह हैं जिब्राहील और मिकाइल, और उस सौदे का स्पोक्समैन है कुरान। 207 नंबर की आयत है सूरह बकरा की, वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह। ये वो हैं जो अपनी जान को, अपने नफ्स को अल्लाह की राह में फरोख्त करते हैं, खुदा खरीदार बनता है, और बदले में खुदा उस जान के उन्हें अपनी मर्जी दे देता है। वो सौदा मुकम्मल हुआ, अल्लाह हु अकबर। ये जान का इन्फाक है, जान का ऐसा इन्फाक ज़मीन व ज़मां की तारीख में मिलना मुश्किल है। 3 दिन पैगंबर की हिजरत के बाद जनाब अली मुर्तज़ा एक मकाम में बुलंद पर खड़े हुए और ऐलान किया कि जिस जिस की अमानतें मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास थी, वो आकर मुझसे ले जाए। अभी देखिए कि पैगंबर ने जाते वक्त इतना ही कहा था कि या अली, जो लोगों की अमानतें हैं उन्हें वापस कर देना। न कोई फहरिस्त दी थी, न कोई तफसील बताई थी, न किसी के नाम दिए थे। इतनी फुर्सत ही नहीं थी, इतना वक्त ही नहीं था। जनाब अली मुर्तज़ा ने कैसे वो सारी की सारी अमानतें, आज तक कोई इतराज़ की उंगली ना उठ सकी कि किसी की काली पोटली थी तो अली ने उसको नीली दे दी, या किसी के 50 दिरहम थे तो अली ने उसे 5 दिरहम दे दिया। जिसका जो की जो अमानत थी उसी तरह उसे पलटा दी गई। पैगंबर कौम के अमीन थे और अली पैगंबर के अमीन, ये सब कैसे हुआ? वही फैसला जो पैगंबर ने के जरिए होना था, वही अली के जरिए क्यों हुआ? बड़ा मशहूर खुतबा है नजब लागा का, खुतबा कासिया। उसमें पहली वही की कैफियत को बयान किया गया, जनाब अमीर ने बयान किया कि आपने पहली वही की कैफियत को देखा। और क्या उम्र थी उस वक्त जनाब अली मुर्तजा की? सिर्फ 7 साल। और एक चीख की आवाज़ सुनी तो आपने पैगंबर से पूछा, आपने आप फरमाते हैं, मैंने पैगंबर से पूछा कि माँ हाज़ा ज़नता, ये किसकी चीख है? تو پیغمبر نے کہا کہ شیطان کی چیخے جو آج اپنی عبادتوں سے بیزار ہو گیا، ان عبادتیں وہ عبادتیں اسے کچھ پھل نہ دے سکیں، پہلی وہی اتر گئی. تو اس وقت پیغمبر نے ارشاد فرمایا جناب علی مرتضیٰ کو، اے علی تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں اور تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، مجھ میں اور تم میں فقط فرق یہ ہے کہ میں نبوت کے منصب پر سرفراز ہوں اور تم خیر کی کیفیت پر. ابھی دیکھیں کہ یہ مقام ہے جناب علی مرتضیٰ کا. اس لیے پیغمبر نے صرف اتنا کہا کہ امانتیں امانت داروں کو دے دینا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ کس کی کون سی امانت ہے اور کہاں رکھی ہوئی ہے اور کتنی اس کی مقدار. اب یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ جس کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں، پچھلے دنوں ایک کلپ چل رہا ہے جاوید الغامدی صاحب کا. جاوید الغامدی سی ایس اے میں میرے استاد بھی رہے ہیں اور بڑی ان کے ساتھ انٹلیکچل بحث مباحثہ میرا مسلسل ایک سال تک چلتا رہا جب تک میں ان کی اسٹوڈنٹ تھی. آج کل ان کا ایک بڑا کلپ مشہور ہو رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے بہت شیعت کے پوائنٹ آف ویو کو کلیریفائی کیا. وہ ساری باتیں انہوں نے کی لیکن بٹوین دا ورڈس کئی بار انہوں نے ایک بہت اہم بات کی جو چونکنے کے لیے کافی ہے. انہوں نے اس تمام مسئلہ خلافت کو ایک سیاسی مسئلے کے طور پر پیش کی. کئی بار اس اپنی اس گفتگو میں انہوں نے شیعوں کا پوائنٹ آف ویو جو بھی ہے لیکن اس کو ایک سیاسی پیراہن پہنا کے اور جیسے ساری خلافت کا جو ڈسپیوٹ ہے اس کی بنیاد سیاست ہے. عزیزو، علی ابن ابی طالب کی خلافت پر حق اہل تشیع کے نزدیک اور اس وقت اکابرین صحابہ عظیم ترین لوگ ابو ذر، سلمان، مقداد، عمار جیسے، ابو ایوب انصاری جیسے مہاجر اور انصار، سب اس مسئلے کو سیاسی نہیں بلکہ دینی مسئلہ سمجھتے تھے. اور 1500 سال کی تاریخ میں اہل تشیع نے خلافت علی پر صرف اسی لیے بے حساب قربانیاں جناب علی کے اس رائٹ آف خلافت پر مسلسل ڈٹ کے کھڑے رہنا، اس پر کمپرمائز نہیں کرنا، اس کی وجہ صرف ایک ہے، سیاست نہیں بلکہ ہمارے نزدیک اور ان تمام اصحاب کے نزدیک جو اکابرین میں سے تھے، نیابت اور خلافت پیغمبر ایک دینی مسئلہ ہے. اور جب انہوں نے اس کا استدلال کیا دربار خلافت میں کھڑے ہو کر تو 12 آدمیوں نے تقریریں کی، 6 مہاجر اور 6 انصار جن میں سلمان فارسی بھی ہیں، ابو ذر بھی ہیں، ابو ایوب انصاری بھی ہیں، سہیل بن حنیف بھی ہیں، عثمان بن حنیف بھی ہیں، اکابرین. انہوں نے جو استدلال کیا حدیث منزلت سے استدلال کیا، ٹریڈیشن آف انڈیئرمنٹ جہاں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تمہاری مثال انت منی بے منزلتا ہارون من موسیٰ. انہوں نے استدلال کیا آئے مباہلہ کے ذریعے سے، انہوں نے استدلال کیا آئے تطہیر کے ذریعے سے، انہوں نے استدلال کیا حدیث غدیر کے ذریعے سے، انہوں نے استدلال کیا پیغمبر کی اس مشہور معروف حدیث کے ذریعے سے، العلی المال قرآن بل قرآن مال علی، العلی المال حق بل حق مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، حق علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. یہ مسلسل استدلال، اور اس کا جواب صاحبان حکومت سے نہیں بن پڑا تھا. تو یہ سارے ڈسپیوٹ جو ہے خلافت علی پر جو ہم ان کا رائٹ سمجھتے ہیں وہ دینی اعتبار سے سمجھتے ہیں، سیاسی ہمارا کوئی مکالمہ اس میں نہیں ہے. ہمارے نزدیک نیابت پیغمبر ایک دینی عہدہ ہے اور دین کے اعتبار سے اس عہدے کے حقدار جناب علی مرتضیٰ ہیں. لہذا یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے اگر کوئی یہ کہے، کوئی بھی یہ کہے کہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور ایک پولیٹیکل ڈسپیوٹ تھی، یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے اور ایک مذہبی ڈسپیوٹ ہے. اچھا، اب جب وہ مال بانٹ چکے جناب علی مرتضیٰ، تو تیسرے دن ہجرت پیغمبر کے آپ نے بنی ہاشم کے خاندان کو ساتھ لیا اور وہ تمام لوگ جو اس وقت تک ہجرت کرنے سے رہ گئے تھے ان کے قافلے کو آپ نے لے کر رات کے وقت مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف سفر اختیار کیا. اب اس قافلے میں جناب علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد بھی موجود ہیں, وہ عظیم خاتون جن کے گود میں نبوت نے بھی پرورش پائی اور امامت نے بھی پرورش پائی. جناب فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین موجود ہیں, فاطمہ بنت زبیر بن عوان ہیں, اور بنی ہاشم کے دیگر لوگ جو ہجرت سے محروم رہ گئے تھے وہ ہیں, اور بہت سارے اور لوگ جو اب تک ہجرت نہیں کر پائے تھے وہ ہیں. طبری نے لکھا کہ تیسرے دن جناب علی مرتضیٰ اس قافلے کو لے کر جو ہے رات کے وقت نکلے. پھر شیخ طوسی نے امالی میں لکھا کہ کفار کو علی کے خاندان اور دیگر مسلمانوں کو ساتھ لے جانے کی اطلاع مل گئی. انہوں نے پیچھا کیا اور زجنان کے علاقے میں جا کر اس قافلے کو گھیر لیا. مہاجر قافلے کی عورتوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں. جناب امیر نے دیکھا کہ مقابلے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, اور یہی اسلام اور مسلمانوں کی عزت کے دفاع کا موقع ہے. تاریخ اسلام میں پہلا موقع مقابلے کا آ گیا. ابھی بدر نہیں ہوئی ہے, ابھی بدر نہیں ہوئی ہے. علی سواری سے اترے, تلوار نیام سے باہر نکالی اور للکار کر ارشاد فرمایا, جس کو یہ آرزو ہو کہ اس کا جسم ٹکڑوں میں بانٹ دوں اور اس کا خون صحرا میں بہا دوں, وہ آگے آ جائے. جلال چہرہ علی مرتضیٰ سے ٹپک رہا تھا. عرب کے شاطر ابو طالب کے بیٹے کا جلال دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ معاملہ ہمارے سروں کی فصل کٹنے پر ہی ختم ہوگا. فوراً راستہ چھوڑ دیا, اور اس کے بعد پھر علی سواری پر نہیں بیٹھے. ابن اسیر نے تاریخ کامل میں لکھا کہ اس کے بعد علی نے سارا سفر 400 میل کا پیدل سفر کیا. ہاتھ میں کھلی ہوئی تلوار تھی. مہاجر عورتوں اور مردوں کا قافلہ چل رہا تھا پیچھے پیچھے, اور آگے آگے علی. اللہ اکبر. اس حالت میں پیغمبر کی خدمت میں آپ مسجد قباء کے قریب پہنچ گئے, جب پیغمبر آپ کا انتظار کر رہے تھے تاکہ مدینہ میں اپنے بھائی کے ساتھ داخل ہوں. لوگوں نے خبر دی کہ علی پہنچ رہے ہیں, علی پہنچ گئے ہیں, لیکن یا رسول اللہ علی اتنے زخمی ہیں کہ اب قدم بھی اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے. علی کے پیروں سے خون بہ رہا ہے. پیغمبر دوڑے, اپنے بھائی کو سینے سے لگایا, آپ کا سر اپنی آغوش میں لیا. علی کے پیر دھلاتے جاتے تھے, پیغمبر اور روتے جاتے تھے. اللہ اکبر. یہ تاریخ اسلام کا پہلا چیپٹر رقم ہوا, وہ چیپٹر جو ہجرت پیغمبر اور انفاق علی سے رقم ہوا. کیا انفاق کیا علی نے؟ جان کا انفاق. یہ علی کے جان کے انفاق سے ہجرت وجود میں آئی. ہجرت کا رول تاریخ اسلام میں ایک بنیادی کیل کا ہے, جس کے گرد مدینے کی ریاست گھومتی ہے, جس کے گرد اسلام کا غلبہ گھومتا ہے, جس کے گرد مسلمانوں کی بیس بنی. اگر ہجرت ناکام ہو جاتی تو کون سی ریاست بن سکتی تھی؟ کون سا مسلمانوں کو غلبہ مل سکتا تھا؟ کون سی بیس ان کی بن سکتی تھی؟ کس جگہ ان کا ٹھکانہ رہ جاتا؟ اللہ اکبر. یہ علی کے جان کا انفاق تھا جس نے ہجرت کی اس کیل کو مضبوطی سے گاڑ کر اس ہجرت کو کامیاب بنایا. اپنی جان کو پیغمبر کی حفاظت کے لیے سپر بنایا, اور تاریخ اسلام میں ایک نئے چیپٹر کا آغاز کیا جسے اسلامی ریاست کا چیپٹر کہتے ہیں, محمد رسول اللہ کے کلمے کا چیپٹر کہتے ہیں, جسے عدالت و انصاف کی ریاست کے قیام کا چیپٹر کہتے ہیں, جسے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گونج کا چیپٹر کہتے ہیں. لوگ اپنی تدبیریں کر رہے تھے, خدا اپنی تدبیر کر رہا تھا. میرے دوستو, یہ ہجرت پیغمبر کی, اس میں علی خدا کی تدبیر کے طور پر سامنے آئے. अली तदबीर खुदा है कि जिसके ज़रिए से खुदा ने काफिरों की उस साजिश को नाकाम बनाया जिससे वो पैगंबर को कत्ल करना चाहते थे। अली वो तदबीर खुदा है जिसके ज़रिए से अल्लाह ने उस हिजरत को कामयाब बनाया। अली वो तदबीर खुदा है जिसके ज़रिए से अल्लाह ने काफिरों के दिल में खौफ डाला। अली वो तदबीर खुदा है जिसके ज़रिए से ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के क़याम का पहला कदम रखा गया। क्या हयात है जनाबी अली मुर्तज़ा की। वो 25 साल जो आपने खामोशी से गुजार दिया वहदत मिल्लत की खातिर, वो जो लोग ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट थी, जरा मेरे सवाल का जवाब दें कि अगर ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट ही थी तो मक्के का सबसे शातिर सियासतदान अबू सुफियान खिलाफत के पहले रोज ही जनाब अली मुर्तज़ा के पास आपके चचा अब्बास के जरिए पहुंचा था, जब पहले ही रोज ये खिलाफत बनी थी। सकीफा ने जो कारनामा दिखाया था और तारीख ने अबू सुफियान के अल्फाज रकम किए हैं जिसमें उसने कहा, अए अली मुर्तज़ा, तुम जो बहादुरी और शेर दिली में मशहूर हो, क्या औरतों की तरह घर में छुपे बैठे हो? मुलाहिज़ा कीजिए तर्ज गुफ्तगू, औरतों की तरह घर में छुपे बैठे हो। अगर लोगों की जमीयत नहीं रखते तो आओ मैं तुम्हारा साथ देता हूं, यह खिलाफत तुम्हारा हक है, या तुम खिलाफत पर बैठो या हम खिलाफत पर बैठे। ये छोटे छोटे सारे लोग कहां से जमा हो गए? मैं जमीयत को इकट्ठा करता हूं और लड़कर तुम्हारा हक तुम्हें दिलवाता हूं। ये ऐन सियासी गुफ्तगु थी, ऐन सियासी गुफ्तगु। अगर ये नियाबत पैगंबर और खिलाफत रसूल सियासी ओहदा होता तो अली इब्ने अबी तालिब झपट कर इस मौके को हाथ में ले लेते, लेकिन ना ये ओहदा सियासी था और ना अली पैगंबर के सियासी जानशीन हैं जिस तरह के मतलब में दुनिया समझती है। अली पैगंबर के दीन की असास में से हैं, दीन की बुनियादें जिनके ज़रिए से रखी गईं, और वो जवाब जनाब अली मुर्तज़ा का इस इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की कमर तोड़ने के लिए काफ़ी है जो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल डिस्प्यूट थी। आपने इरशाद फरमाया कि ए अबू सुफियान, तेरे दिल से अभी तक तबलीग का वो कीना जो मोहम्मद और मेरी तरफ से दिल में मौजूद है वो ख़त्म नहीं हुआ। क्या तो अपने सवारों और प्यादों के ज़रिए से मदीने की गलियों को मुसलमानों के खून से रंगीन करना चाहता है? मुझे तेरे सवारों और प्यादों की कोई ज़रूरत नहीं। ज़रा इस खूबसूरत जवाब पर गौर कीजिए, अगर ये ओहदा सियासी होता तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी सियासतदान ने किसी दूसरे सियासतदान को नहीं दी। और अगर ये दीनी ओहदा था और दीनी ओहदा है तो अबू सुफियान का दीन से क्या वास्ता? और अली मुर्तज़ा उस दीन के लिए जिसकी बुनियादों में अली की जान का इन्फाक मौजूद है, कैसे एक शातिर सियासतदान के हाथों उस दीन का सौदा कर सकते थे? अल्लाह हू अकबर। वो 25 साल जनाब अमीर ने जिस खामोशी के साथ वहदत मिल्लत के लिए गुजारे, और उसके बाद वो 5 साल जो बड़ी तकलीफ़ से जनाब अली तक पहुँचे खिलाफत के नाम पर, और फिर उस दौरे खिलाफत में भी कभी इन्फाक आड़े आया तो कभी अदालत लोगों को पसंद आई, कोई भी उस तरीके पर चलना ही नहीं चाहता था जो तरीका पैगंबर ने मदीने की रियासत में कायम किया था। यहाँ तक कि वो फितना जिसे खारजियों का फितना कहते हैं, मेरे दोस्तों, अगर अली एक सियासी ओहदा या सियासी मर्तबे और मकाम के आदमी होते तो नहरवान की जंग में सियासत और दीन अलैदा अलैदा हो गई। किससे लड़ाई हुई थी? जो नमाजें पढ़ने वाले, तहज्जुद गुजार, रोज़ा रखने वाले, इतने रोज़ों पर रोज़े के उनके पेट उनकी पीठों से लगे हुए थे, उनके लिबास तक्वा और जुहद की निशानी थे, उनकी दाढ़ियाँ बड़ी हुई थीं, उनके सजदों के निशान उनके पेशानियों पर, उनके पैरों के गट्ठों पर पड़े हुए थे, ज़बानें उनकी तलावत कुरान से लबरेज थीं, उठते बैठते बात का जवाब आयत कुरान से दिया करते थे। ऐसे मुसलमानों का कि जिन्होंने अपना ओढ़ना बिछोना ही तिलावत कुरान को बना लिया हो, सजदों और रुकू और सुजूद को करार दे दिया हो, उनसे सियासतदान नहीं लड़ा करते और न लड़ सकते हैं। उनसे फकत वही लड़ सकता है जिसका रिश्ता कुरान के साथ हो, जिसका रिश्ता हक के साथ हो, जिसका रिश्ता दीन के साथ हो, जिसके लिए पैगंबर ने कहा हो कि अल्लाह और उसका रसूल इससे मोहब्बत करते हैं और ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, जिसके लिए पैगंबर ने कहा हो बरजुल ईमान कुल्लहू इलल कुफ्र कुल्ले, सारा कुफ्र एक तरफ हो जाए तो एक अली वाहिद कुल्ले ईमान उनके मुकाबले पर काफ़ी है। वही सिर्फ मुकाबला कर सकता है। आज तक जनाब अली मुर्तज़ा के उस मुकाबले पर किसी ने एक उंगली उठाई? किसी किस्म का कोई उसके ऊपर कोई धब्बा आ सका? और आपने खुद नजर बिलागा का 92 नंबर का खुतबा है, इसमें आपने इरशाद फरमाया कि मैंने उस फितने की आग और इंटेंसिटी को भांप लिया। ये फकत अबू तालिब का ही बेटा था जिसने पूरी कुव्वत के साथ उस फितने की आंखों में अपनी उंगलियां गाड़ दी, उसकी आंखों को फोड़ दिया, और उस फितने से जो इस्लाम की कमर को टेढ़ा कर रहा था उस फितने की आग को ठंडा किया। ये सियासतदानों का काम नहीं होता, ये फकत उनका काम है जो पहले रोज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के झंडे को उठाए उठाए चलते रहे। ये फकत उनका काम है कि दीन और वो अलहदा अलहदा नहीं है। ये फकत उनका काम है कि जो खुदा की तौहीद को बचाने के लिए कभी नसरान के नसरान ईसाइयों के मुकाबले पर पहुँचते हैं, कभी खैबर में यहूदियों के मुकाबले पर पहुँचते हैं, कभी बद्र अहद में काफिरों के मुकाबले पर पहुँचते हैं। ये सियासतदानों का शेवा नहीं है, ये जंग नहरवान किसी सियासतदान के बस की बात नहीं थी। ये फकत वही लड़ सकता था जिसका सीना कुरान हो, जिसकी जबान कुरान हो, जिसका दिल कुरान हो, जिसकी परवरिश कुरान और पैगंबर हो, जिसके कानों ने वही की आवाज़ सुनी हो। ये फकत उसी के बस की बात थी। बस अजीजों, 40 हिजरी का रमज़ान आ गया, वो हिजरी वो साल अली के जान के इन्फाक से जो हिजरत हुई, वहाँ से मुसलमानों ने अपनी तारीख को गिनना शुरू किया। कहाँ कहाँ अली को फरामोश कर सकते हैं आप? 40 साल हो गए थे उस मामले को हिजरत के, यानी जब आपने हिजरत फरमाई और पहली बार तलवार निकाल कर आप खड़े हो गए कुफार के सामने, तो आपकी उम्र मुबारक फकत 23 बरस थी। 40 हिजरी का रमजान आ गया, बस ये अजीब रमजान था, पैगंबर के वादे का दिन था, वादे का रमजान था। जब आप बिस्तर पर सोए तो हिजब हिजरत, तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया था अली तुम पर कोई गलबा नहीं हासिल कर सकता। और ये बात तारीख ने साबित की कि अली पर कोई गलबा हासिल ना कर सका। जब उहद के मैदान से वापस पलटे और जख्मों से चूर चूर थे, 26 बरस की उम्र थी जनाब अली मुर्तजा की, रसूल के जुमले कानों में गूंज रहे थे तुम पर कोई गलबा हासिल नहीं कर सकता। आपने खुद इरशाद फरमाया कि नहजुल बलागा में आपकी वो गुफ्तगू मौजूद है। आपने पैगंबर से पूछा कि या रसूलल्लाह क्या मुझे शहादत नहीं नसीब होगी? आपने इरशाद फरमाया बेशक होगी, शहादत तुम्हारे पीछे पीछे। अब शौक है शहादत जनाब अली मुर्तजा का अजीब था, लेकिन साथ में पैगंबर ने यह भी कहा था कि तुम पर कोई गलबा हासिल नहीं कर सकता।
40 हिजरी का रमजान अली के शौके शहादत की तकमील का रमजान है। कुछ सामने आकर गलबा हासिल नहीं कर सकता था। हाँ, इब्ने मुलजिम ने सजदे में नमाजी पर तलवार चला दी। जैसे जैसे रमजान की रातें गुजरती जाती थीं, मेरे इमाम के एक बेचैनी में इजाफा होता जाता था। जनाब उम्मे कुलसुम इरशाद फरमाती हैं कि 19वीं रमजान की रात मेरे बाबा मेरे घर में मेहमान थे, यानी मैंने बाबा के इफ्तार का एहतमाम किया हुआ था। क्या एहतमाम था जनाब अली मुर्तजा के इफ्तार का। बेटी ने रोटी रखी और नमक रखा, एक दूध का प्याला रख दिया कि अब 63 बरस की उम्र हो चुकी है। दस्तरखान को देखा और फरमाया कि कब तुमने अपने बाप को ऐसी कैफियत में देखा कि उसके दस्तरखान पर 2 सालन हूं। एक उठा लो, एक सालन उठा लो। जनाब उम्मे कुलसुम ने चाहा कि मैं दूध का प्याला उठा लूं, जो नमक उठा लूं, आपने रोक दिया। आपने इरशाद फरमाया इस दूध के प्याले को उठा लूं। अल्लाहु अकबर, वो करीम इमाम, वो दूध का प्याला रख दिया गया। और जब इब्ने मुलजिम ने जरबत लगाई और जब लोग उसे पकड़ कर लाए, वो हाँप कांप रहा था, तो आपने बेटी को पैगाम भेजा कि वो दूध का प्याला भेज दो। ये करीम इब्ने करीम हैं, सखी इब्ने सखी हैं, ये हैं दीन, वो दीन जो सलामती का नाम है। बस बार बार नमाज शब से फारिग होकर अली सहने खाना में जाते थे, आसमान की तरफ देखते थे, फिर वापस अपने कमरे में आ जाते थे, फिर इबादत खुदा में मशगूल हो जाते थे। यहाँ तक के फजर का वक्त करीब हो गया। बेटी ने पूछा, जनाब उम्मे कुलसुम ने पूछा, बाबा आज आप बहुत बेचैन हैं। कहाँ, खुदा से मुलाकात का वक्त करीब आ गया है। बस नबुवत के घराने की बेटी है अली मुर्तजा और फातिमा जहरा के दिल का चैन है। समझ गई है, वही शब है, ये वही रात है जिसका वादा मेरे नाना ने मेरे बाबा से किया था। अब जनाब उम्मे कुलसुम है और आपकी आंखों के सामने आपके वालिद की बेचैनी। यहाँ तक के फजर की नमाज का वक्त करीब हुआ, आप घर से बाहर निकलने लगे। बदखों ने आपके दामन को पकड़ लिया, चीखने लगी जैसे कहती होंगी कि आका न जाइए। आपने दामन बदखों से छुड़ाया और बेटी को उनकी सिफारिश की कि अगर इन्हें दाना पानी दे सकूं अच्छी तरह तो अपने पास रखना, वरना इन्हें आजाद कर देना। सहन से दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजे से निकलना ही चाहते थे कि जंजीर दर कमर के पटके में अटक गई और पटका खुल गया, जैसे दरवाजा कह रहा हो मौला न जाइए। आपने अपने दोनों हाथों में पटका पकड़ा और अपनी कमर पर बांधते हुए इरशाद फरमाया, ऐ अली, खुदा से मुलाकात के लिए अपनी कमर को कस ले। अल्लाह अकबर। आप मस्जिद कूफा में तशरीफ लाए, गुलदस्ते अजान पर गए। आखिरी अजान अली इब्ने अबी तालिब की अहले कूफा की कानों ने सुनी। उसके बाद गुलदस्ता अजान से उतरे और असलात असलात का नारा लगाया। सहने मस्जिद कूफा में इब्ने मुलजिम मुंह के बल सो रहा था, झुंझोड़ कर उठाया, उठो असलात असलात। फिर 2 कदम आगे बढ़े और फिर पलट कर आए और कहा कि तूने जिस चीज का इरादा किया है वो बहुत ही दर्दनाक है। मौला आप हमेशा मुझसे शुकू को शुभात की नजर रखते हैं मुझ पर। तो आपने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया कि अगर तू चाहे तो वो शय बता दूं जो तूने अपने पेट के नीचे छुपा रखी। हाय वो जहर भरी तलवार। बस अली गुलदस्ता अजान पर आए, अजान से उतरे और नमाज की तरफ मुतवज्जा हुए। पहली रकत का दूसरा सजदा था, सुतून मस्जिद के पीछे से इब्ने मुलजिम ने तकबीर की आवाज बुलंद की और तलवार का वार अली के सर पर कर दिया। आए तकबीर पढ़कर अली पर वार हुआ, तकबीरें पढ़कर हुसैन पर वार हुए। जिन्होंने तकबीर सिखाई उन्हीं पर तकबीर का हथियार इस्तेमाल हो गया। अली चकरा कर गिर पड़े। इमाम हसन अलैहि सलाम ने नमाज को जल्दी से तमाम कराया, घर से कंबल मंगाया, शहीद कूफा को कंबल में लिटाया गया। घर की तरफ बेटे जख्मी बाप को ले जा रहे हैं। सहने मस्जिद कूफा में पहुंचे तो आपने हुक्म दिया अपने फर्जंदों को, आए हसन हुसैन ये कंबल जमीन पर रख दो। कंबल जमीन पर रख दिया। आपने उस शिगाफ्ता सर, हाय वो जख्मी सर उठाया और खाक के कूफा पर अपने परवरदिगार की बारगाह में सजदा किया। ये मस्जिद से जाते हुए आखिरी सजदा है अली का। आसमान की तरफ देखा, इरशाद फरमाया, परवरदिगार जब रोजे हश्र तेरी बारगाह में अंबिया और औसिया जमा हो तो उस वक्त तू गवाही देना अली ने तेरी इताअत में कोई कमी नहीं की। फज़े तो बेरब्बिल काबा, खुदा की कसम अली कामयाब हो गया। बस घर की तरफ ले आए, दोस्तों को रास्ते से रुखसत कर दिया इस ख्याल से कि बेटियां कहीं बाहर न निकल आई हूं। हाय ज़ैनब और उम्मे कुलसुम, आपने नाना की रहलत भी देखी, आपने जख्मी माँ का जनाजा भी देखा, आज बाबा जख्मी होकर आ रहे हैं। तबीब बुलाए गए, तबीबों ने सर से पगड़ियां उतार कर फेंक दी, कहा ये अब नाबी तालिब वसीयतें कीजिए, वार इतना कारी है, जहर नीचे तक उतर चुका है। बस वो 3 दिन जो जनाबी अली मुर्तजा ने उस बिस्तरे मर्ज पर गुजारे, उसमें भी आवाज देते रहे, सलूनी सलूनी कबल अन तफकदूनी। जो आखिरी तिलावते कुरान आपने इरशाद फरमाई, सूरह अहज़ाब की आयात की तिलावत करते रहे और आखिरी आयत जो आपने सूरह अहज़ाब की पढ़ी आंखें बंद करते हुए आपने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह व यख्शूनहू वला यख्शूना अहदन इलल्लाह वकफा बिल्लाह हसीबा। जो अल्लाह के पैगाम को पहुंचाते हैं, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह, जो अल्लाह की रिसालत की उसके पैगाम की तबलीग के काम को अंजाम देते, वो यख्शूनहू वो किसी से नहीं डरते, वला यख्शूना अहदन इल्लल्लाह फकत अपने अल्लाह से खौफ खाते हैं। और वह कफा बिल्लाह हसीबा, उनका अल्लाह उनके लिए काफी है। ऐसी जिंदगी गुजरी अली की, खौफ से मावरा, किसी से न डरने वाले, हक के लिए डट कर खड़े रहने वाले, इंसाफ के लिए जान कुर्बान करने वाले, किसी हुजन मलाल का शिकार ना होने वाले, बस वकफा बिल्लाह या सिबा, उनके लिए उनका अल्लाह काफी है, उनके लिए उनका अल्लाह काफी है, बेशक अली या अली आपके लिए आपका अल्लाह ही काफी है। बेटों को वसीयत की, मेरे जनाजे को रात में उठाना, कब्र को पोशीदा बनाना, वो मकाम भी बता दिया, नजफ अशरफ का, जहाँ आदम पैगंबर ने आपकी कब्र तैयार कर रखी थी। ये मकाम अबू तालिब, अली इब्ने अबी तालिब है। आदम पैगंबर ने अली की कब्र तैयार की और उसी कब्र के साथ अली के आदम भी मदफून है, नूह भी मदफून है। कैसे साथी हैं, खूबसूरत साथी अली के, आंखें कभी खोलते थे और कभी गश में आ जाते थे, कभी आंखें खोलते थे घर वालों को देखते थे, कभी आंखें बंद कर लेते थे। यहां तक कि कब्र वक्त बहुत करीब होने लगा, आपने सारे अहले खाना को जमा किया, सबके हाथ, सबको नजर भर के देखा, सब पर प्यार की निगाह डाली, सबके सरों पर हाथ फेरा, सबके हाथ इमाम हसन अली सलाम के हाथ में दे दिए, और उसके बाद आपने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखों को बंद करना था, बीबी के रोने की आवाज कान में पड़ी, आंखें खोल कर पूछा कौन रोता है, अभी मैं जिंदा हूं, तो जवाब मिला उम्मुल बनीन रो रही हैं। पूछा बीबी क्यों रोती हो, कहा मौला मुझे लगता है मेरे अब्बास से कोई गलती हुई है। कहा क्या हुआ, कहा आपने सबके हाथ, सारे अहले खाना के हाथ इमाम हसन अलैहि सलाम के हाथ में दे दिए, मेरे बच्चे का हाथ नहीं पकड़ाया आपने, उसके इमाम के हाथ में नहीं दिया। ये अजीब सवाल था जनाबे उम्मुल बनीन का, हाय क्या गुजरी होगी अली मुर्तजा पर, क्या गुजरी होगी, हलम दर दस्ते अब्बा से दिलावर, बशाने अली दर फौजे पैगंबर, बुलाओ मेरे बेटे को, बुलाओ अब्बास को, ये उसी शान से अली का, उसी शान से अलम उठाएगा हुसैन का, जिस शान से मैं पैगंबर का अलम उठाया करता था। उठाया हाथ जनाबे अब्बास का, हाथ अपने हाथ में लिया, बच्चे के बाजुओं को चूमा, सीने से लगाया और हाथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया, और बेटे से इतनी ही वसीयत की कि अब्बास ये पैगंबर का बेटा है और तुम मेरे बेटे हो, बस ख्याल रखना कि तुम्हारे आका हैं ये पैगंबर के बेटे हैं। فلا لعنة الله على القوم الظالمين.